அர்ஹந்தாணம் நமோ சித்தாணம் நமோ ஆயிரியாணம் நமோ வஜ்ராயாணம் நமோ லூயே சவ்வசாவுணம். ஹேது பஞ்ச நமோ யாரோ சவ்வ பாவ பநாசனோ மங்களாணம் ச சவ்வேதம் பரமம் ஹூயி மங்களம். மோக்ஷ மார்கஸ்ய நேதாரம் வேதாரம் கர்ம பூவ்ரதாம் ஜ்யாதாரம் வேஷ்வ தத்வானாம் வந்தே சதுகுண லப்தை வந்தே சதுகுண லப்தை வந்தே சதுகுண லப்தை.
हाँ बोलिए. तत्वार सूत्र के बारे में अपनी चर्चा चल रही थी और तत्वार सूत्र के लगभग 15 सूत्रों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं. इसमें आपको कुछ पूछना है बोलिए.
पहला प्रश्न है, आपने बोला कर्म सूत्र है.
हाँ,
तो हम कर्म को देख सकते
हैं? कर्म पुद्गल है, हमने कही थी ये बात. कर्म पुद्गल है, यद्यपि कर्म पुद्गल है. पुद्गल क्या होता है? पुद्गल, पुद्गल की बात आ गई. शुरू करते ही पुद्गल की बात आ गई. सतीश भाई क्या करें? माने जिसमें स्पर्श हो, जिसमें रस हो, जिसमें गंध हो, जिसमें कलर हो, जिसे देखा जा सके, वो सब पुद्गल है. इन चार में से एक भी होता है ना, तो बाकी तीन अपने आप होते हैं. मतलब होंगे तो चारों होंगे, नहीं होंगे तो एक भी नहीं होगा. मैं आपसे पूछता हूँ, हवा जीव है या पुद्गल है? दिखती तो नहीं है लेकिन छूते हैं, टच होती है. इसका मतलब जिसमें टच है, तो जो टच हो रही है हवा, जो पुद्गल है, उस हवा में रस है या नहीं है? है, लेकिन महसूस नहीं कर पा रहे क्योंकि स्पर्श है. उस हवा का कलर है या नहीं है? कलर है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे. हमारी शक्ति नहीं है, अपने में इतनी पावर नहीं है कि अपन उस एयर के कलर को देख सके. बट टच हो रही है, इट मीन्स वो है, उसमें कुछ ना कुछ. यही बात हम यहाँ कहना चाह रहे हैं आपको. कर्म भी टच होते हैं. यदि टच नहीं हो तो बंधे कैसे? अनटच जो भी वस्तु होगी वो बंध नहीं सकती है. जो बंधेगी उसमें टच नियम से होगा, स्पर्श नियम से होगा. स्पर्श है इसलिए बंधता है कर्म. तो फिर रस है या नहीं है? उनमें रस भी है, उनमें गंध भी है. कर्म पुद्गल परमाणुओं में कलर भी है, बट हमारी आंखों में इतनी ताकत नहीं है कि हम उसे देख पाए. ठीक है, हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, हम उसे देख नहीं पा रहे. ठीक है, हो गया.
असैनी पंचेंद्री का आपको उदाहरण दे सकते हो?
असैनी पंचेंद्री का उदाहरण हमने कल दिया था. उदाहरण किसी ने पूछा था हमसे लास्ट में, आपने पूछा था. असैनी पंचेंद्रिय माने जिनके स्पर्शन रसना ग्राण चक्षु कर्ण ये पांच इंद्रियां तो हो लेकिन मन नहीं हो. कुछ पैरट पोपट, उनकी कुछ ऐसी जातियां होती है जो असैनी होती है. कुछ समुद्र में रहने वाले स्नेक वगैरह, उनकी इस तरह की जातियां होती है जो असैनी है. हाँ, पांच इंद्रिय हैं लेकिन मन नहीं है. समुद्र में रहने वाले बहुत से ऐसे जलचर जीव हैं जिनकी प्रजातियों में वो पांच इंद्रियां तो है लेकिन मन नहीं है, ऐसा है. हाँ, एक और लास्ट प्रश्न सुनो.
आपने कल बताया कि मन की व्याख्या में ऐसा आपने बोला कि जो हित और अहित जाने.
हाँ,
मन है.
हाँ,
उसी को मन कहला जाते.
हाँ,
फिर आपने बोला गाय घास की तरफ जाएगी, गौरव की तरफ नहीं जाएगी.
सही बात है.
तो मेरा प्रश्न ये है ये जो आपने जीत अहिंसा बोला, मान लो कि मेरे को मन है, अगर मैं शराब पीता हूँ, जुआ खेलता हूँ, जो मेरे लिए अहित है, तो उस टाइम पे मेरा मन है कि नहीं?
उस टाइम पर आपका मन तो है, लेकिन वो मन गलत काम कर रहा है। उस टाइम पर भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज उठती है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ। एक मिनट, आपके पास मन है,
मन है,
अंदर की आवाज आती है ना। हर गलत काम करने वाले व्यक्ति के मन में ये बात जरूर उठती है कि मैं नहीं करूँ। फिर दूसरा मन कहता है, अरे कर ले यार, क्या है, तो कोई बात नहीं। एक मन कहता है, भैया तुझे भोगना पड़ेगा, नरक में जाएगा। दूसरा, अरे किसने देखा नरक, तू तो अभी तो चलने दे, अभी तो भोग ले। तो ये जो बात उठ रही है, ये जो बात पक्ष जिसमें खड़े हो रहे हैं, ये है मन। मन में इस प्रकार के संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। हित और अहित की बुद्धि जहाँ होती है वो मन होता है। इंद्रियों और मन से जो काम करता है वो कौन सा ज्ञान कहलाता है? मति ज्ञान। पांच प्रकार के ज्ञान की चर्चा चल रही थी अपनी। पांच प्रकार के ज्ञान, नाम सबको याद है, मति ज्ञान पहला, दूसरा श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परिय ज्ञान और केवल ज्ञान। पांच है, मति, श्रुत, अवधि, मने परिय और केवल ज्ञान। मति ज्ञान की व्याख्या यहाँ चलती थी। मति ज्ञान की व्याख्या करते हुए ये बतलाया, तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त होता है उसका नाम क्या है? मति। माने मति ज्ञान में इंद्रियां और मन ये दोनों निमित्त बनते हैं, ठीक है। अच्छा, इस मति ज्ञान के जानने की प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, इस संदर्भ में चार पॉइंट कहे थे, चार चलनियां कही है। मति ज्ञान जब भी जानने के लिए प्रवृत्ति करता है तो सबसे पहले अवग्रह होता है। अवग्रह माने फर्स्ट स्टेप जानने के लिए। जानने का जो पहला स्टेप है वो कहलाता है फर्स्ट स्टेप, वो कहलाता है अवग्रह। अवग्रह में बस है, कुछ है, ये जो बस कुछ हुआ, कुछ ख्याल में आया, कोई चीज सामने से निकली एकदम, ये क्या हुआ? अवग्रह। व्हाइट कुछ दिखा एकदम, फिर अवग्रह हुआ था, तुरंत इच्छा हुई, क्या था? जानने की इच्छा, ये कहलाएगा ईहा, सेकंड स्टेप हुआ। लेकिन ध्यान रखिए, अवग्रह होने के बाद में ईहा हो ये जरूरी नहीं है। आप काम में थे, आप जल्दी में थे, आपका दिमाग आपका उपयोग कहीं लगा हुआ था, आप दौड़ रहे थे, कई बातें ऐसी होती है, अनगिनती चीजें जो आपको दिखती है लेकिन अवग्रह होकर के रह जाती है या नहीं होती है, उसके बारे में जिज्ञासा ही नहीं हुई, विकल्प ही खड़ा नहीं हुआ कि मैं आगे जानूं। कभी कुछ ऐसा भी होता है, अवग्रह हुआ और ईहा हुई, आप निर्णय तक नहीं पहुंचे और आपने बीच में छोड़ दिया, तो अवग्रह और ईहा होकर के छूट गया, अवाय नहीं है। अवाय भी हो गया, निर्णय भी किया, लेकिन वो धारणा तक नहीं पहुंचा। अच्छा, धारणा तक नहीं पहुंचेगा तो क्या नुकसान होगा? स्मृति का विषय नहीं बनेगा, ठीक है ना। आप कौन सी बातों को अपनी स्मृति का विषय बनाना चाहते हैं? कल मैंने लास्ट पॉइंट्स में इस प्रकार की चर्चा की थी, अंतिम चरणों में अपने प्रवचन में बहुत बातें हुई थी अपनी इसके बारे में। लास्ट लास्ट में हमने ये देखा था, हमें बताओ आप कौन सी बातों को अपनी स्मृति का विषय बनाना चाहते हो? आपकी मंजिल क्या है? आप जाना कहाँ चाहते हो? फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड, कहाँ जाना है हमारे को, ये नक्की करना पड़ेगा हमारे को। नरक में जाना है कि स्वर्ग में जाना है, देवगति में जाना है कि मोक्ष जाना है, संसार में रुलना है कि क्या करना है हमारे को, दुखी होना है कि सुखी होना है। वी हैव टू डिसाइड फर्स्ट, सबसे पहले नक्की करो, निर्णय करो आपको कहाँ जाना है, उसके हिसाब से फिर कदम बढ़ेंगे आपके। मैं सिर्फ धर्म की बात नहीं करता हूँ, मैं लौकिक बात भी करता हूँ महेंद्र भाई, मैं घर गृहस्थी की बात भी करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आत्मा परमात्मा की किसको पड़ी है, सबको अपनी गृहस्थी संभालनी है, बात तो ऐसी है ना। लेकिन भाई आत्मार्थी अपने गाय भगवान आत्मा की सोचता है। आत्मार्थी को गृहस्थी वही दिखती है, अनंत गुण संपदा वो अपना परिवार दिखता है, असंख्यात प्रदेश वो अपना परिवार दिखता है। सिद्धों की श्रेणी में जाना, अनंत सिद्ध चारों तरफ होंगे वो अपना परिवार दिखता है। ज्ञानियों और साधर्मियों को साधर्मी परिवार जैसे दिखते हैं, उनका सच्चा परिवार वही है, ये दिखता है हमारे को। चलो हमें आपसे ये कहना है कि आपसे किसी ने कोई अपशब्द कहे, वे आपके अवग्रह का विषय बना, कर्ण इंद्रिय से आपने जाना, फिर आपके दिमाग में थोड़ा सा बड़ा कि क्या कह दिया इसने, ईहा हुई, आप गहराई में गए, आपने उस निर्णय पर पहुंचे कि इसने मेरे से बहुत गलत कहा, हवाए हो गया। हमारा आपसे निवेदन है, हवाए भी नहीं करें, हमारा आपसे निवेदन है उसे धारणा तक नहीं ले जाएं। यदि आप उसे धारणा तक ले जाएंगे तो पता है क्या होगा, तकलीफ देगा, वो पीड़ा देगा। किसको पीड़ा देगा, किसको तकलीफ देगा? मयूर भाई, मयूर भाई, किसको पीड़ा देगा? आप जो तकलीफ देने वाली चीज है उसको ज्यादा लंबे समय तक मत रखिए। आपके हृदय में यदि कहीं कोई तकलीफ हो गई है, यदि ब्लॉकेज है, तो ज्यादा लंबे समय तक रुको मत, रिमूव करो उसको। वायरस यदि आपके कंप्यूटर में है तो उस वायरस को रिमूव करो, यदि वायरस रिमूव नहीं किया तो खा जाएगा वो सब थोड़े समय में। आपको यदि बीमारी हो गई है, आपको यदि रोग हो गया है, आपको यदि तकलीफ हो गई है, बीमारी जितनी जल्दी निकल जाए उतना अच्छा है, ज्यादा लंबे समय तक नहीं। धारणा का विषय क्या बनना चाहिए? मैं गायक भगवान आत्मा हूँ, ये धारणा का विषय हो। मैं त्रिकाली ध्रुव अभेद अखंड भगवान आत्मा हूँ, ये धारणा का विषय होना चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ ये इसमें कितना वजन होगा, कितना वजन होगा? गिरीश भाई, हाफ पाउंड मान लो, 200 ग्राम लगभग, 200 ग्राम इसके अंदर वजन है। उठाने में दर्द होता है? ऐसे उठाया आप उठा सकते हैं? तकलीफ तो नहीं है? अच्छा, ऐसे उठाए रख सकते हैं 5 मिनट? हाँ रख सकते हैं, 5 मिनट
लंबे तक नहीं
रख, 5 मिनट रख सकते हैं। अच्छा 5 मिनट रख सकते हैं, और 2 घंटे रखने के लिए कहूँ तो? अच्छा $100 दूंगा, 2 घंटे रख सकते हैं? $100 में भी नहीं, आपके लिए $100 छोटी सी चीज है। क्या $500 बोली बढ़ाता हूँ, $1000 इधर से आवाज आ रही है, रख सकते हैं। $1000 के लिए 2 घंटा क्या फर्क पड़ता है? अच्छा 2 घंटा रख सकते हैं, 6 घंटा रख सकते हैं? नहीं रख सकते, रख तो सकते हैं पंडित, लेकिन हाथ दर्द करेगा। क्या 1 दिन रख सकते हैं? रख तो लेंगे, लेकिन हो सकता है पैरालिसिस का अटैक आ जाए, हाथ ऐसे रह जाए, फिर नीचे करें तो बस फिर वो क्या हो सकता है। इसका मतलब ये वजन है, ये वजन है, इस वजन को जितना जल्दी उतार दो उतना अच्छा है। इस वजन को जितना ज्यादा लंबे समय तक हाथ में रखोगे उतना ज्यादा बीमारी करेगा, प्रॉब्लम करेगा। हो सकता है ऐसी स्थिति हो जाए कि आपको ऑपरेशन कराना पड़े हाथ का, क्या ये सिचुएशन हो सकती है। हम यही कहना चाह रहे हैं, आपके दिमाग में जो बीमारी है, जैसे आप धारणा तक ले गए हैं, जो धारणा ज्ञान का विषय बनने जा रही है, मत बनने दो, मत सोचो उसके बारे में, मत देखो किसी की कमियां, मत देखो किसी की गलतियां, मत देखो किसी के दोष, क्योंकि हर व्यक्ति जिसमें आप दोष देख रहे हैं उसमें अनंत गुण मौजूद हैं और भगवान बनने की पात्रता है उसमें, हर व्यक्ति में। मांस खाने वाला व्यक्ति, घृणा मत करो उससे, क्या वही तो कह रहे हैं, वही हम कह रहे हैं आपसे कि आपको कहां जाना है आप पहले डिसाइड करें, फिर उसके बाद में अपनी धारणा उस हिसाब से बनाएं। आप यदि गलत धारणा होगी तो आपके लिए नुकसान होगा, और आपकी धारणा में यदि अच्छी बातें बैठेगी तो हो सकता है आपके जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाए। ये तत्व ज्ञान की बातें, ये वस्तु स्वरूप की बातें यदि आपके धारणा ज्ञान का विषय बनेगी तो कल भी हमने कही थी बुढ़ापे का सहारा बनेगी। आप चाहते हैं ये धारणा ज्ञान बुढ़ापे में सहारा बने? क्या आप ये चाहते हैं कि बड़बड़ाते रहें? बहुत कम लोग होते हैं ऐसे भाग्यशाली, ऐसे बापूजी जैसे, बोलो ऐसे इतनी एज में भी माने जो शांत रह सके, बल आराधना का, बल तत्व ज्ञान का, इससे शांति मिलती है, हमारे को अपार शांति मिलती है। कैंसर का रोग हो जाए तकलीफ नहीं होती, तकलीफ अलग जगह है, अपनी जगह है, लेकिन उस तकलीफ को झेलने की पावर मिलती है। वो पावर कहाँ से आती है? वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है आपको? ये तत्व ज्ञान से मिल रही है, जनवाणी से मिल रही है। तो आपने अपनी धारणा का विषय क्या बनाया? जीवन भर क्या बनाया? प्रैक्टिस काय की कर रहे हैं? बोलो आप काय की प्रैक्टिस कर रहे हैं? नरक जाने की? हमें तो आदत है जीने मरने की, प्रैक्टिस है हमारे को तो, क्षण 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 में जन्म मरण करना, निगोद में चले जाना, एक इंद्रिय हो जाना, एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण। नहीं भाई साहब, गलत चीज की प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। किस चीज की प्रैक्टिस करना है बोलो? वेद विज्ञान का अभ्यास करो, वेद विज्ञान की प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस करो जो बातें सीखी है गिरीश भाई, जो सूत्र आपने बोला है उस सूत्र को बोलने की प्रैक्टिस करो। हर चीज प्रैक्टिस मांगती है। गाड़ी चलाते हो? आता है चलाना? कब से आता है? जैसे अभी चलाते हो, शुरू से ऐसे ही चलाते हो इतनी परफेक्ट? फिर नहीं, धीरे धीरे। खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, पहली बार बनाई थी तो कैसी बनी थी? कहाँ का नक्शा? हिंदुस्तान का। क्या बात है, अमेरिका में बैठ करके हिंदुस्तान का नक्शा बनाते हैं? ट्रंप को पता लग जाएगा तो क्या करेगा? बोलो पहली बार रोटी बनाई थी तो कैसी बनी थी और अब कैसी बनती है? अब तो चंद्रमा बनता है पूर्णमासी का, और पहली बार नक्शा बना था, पहली बार धरती बनी थी, अब चंद्रमा बनता है। बोलो ये फर्क कैसे आ गया? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। आपने पहली बार यहां आकर के सुनने का प्रयास किया, आपको बहुत बातें समझ में नहीं आई, अब क्यों समझ में आ रही है? प्रैक्टिस। आप किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं? आप डॉक्टर हैं, आप केस लड़ने की प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा? आप जीव हैं, आपकी प्रैक्टिस चेतन की दिशा में चलनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस जागृति की दिशा में चलनी चाहिए। आपकी प्रैक्टिस हूं परमात्मा क्यों हूं, गायक क्यों, इस दिशा में आपकी प्रैक्टिस चलनी चाहिए। आपकी प्रैक्टिस इस दिशा में चलनी चाहिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, इसको अपनी प्रैक्टिस में लो, इसको अपने चिंतन में लो। यदि आपके चिंतन और प्रैक्टिस का विषय बन गया तो आपको ये भेद विज्ञान स्पष्ट दिखेगा, कदम कदम पे भेद विज्ञान दिखेगा आपको। हो कण कण की स्वतंत्रता है, क्या स्वाधीन जगत है, ये जगत अत्यंत स्वाधीन है। और फिर जब ये बातें आपकी धारणा का विषय बनती है तो जीवन तो सुधरता ही है, मरण भी सुधरता है, जन्म सुधरता है, जन्म जन्मांतर भाव सुधरते हैं, अनंत काल सुधरता है, फ्यूचर सुधरता है, और अल्प काल में निर्वाण की प्राप्ति होती है। क्या चाहते हैं आप बोलो? डिसाइड करें आप क्या चाहते हैं, क्या बन रहा है आपकी धारणा का विषय? अरे ये तो बहुत नालायक है भाई, ये तो बहुत दुष्ट है, ये हमारा दुश्मन है, पता नहीं कौन सी घड़ी में हमारे घर ने जन्म लिया था, पता नहीं कौन सी घड़ी में इनसे संपर्क हुआ था, पता नहीं कब ऐसा हुआ था। मैं तो बहुत दुखी हूं, मैं कह नहीं सकता आपसे। सुनो भाई सुनो, अपनी धारणा बदलो। धारणा बदलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए किसी व्यक्ति के बारे में जो धारणा बन गई एक बार, वो धारणा बदलना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए धारणा गलत बनने ही मत दो किसी के प्रति। हर जीव को भगवान देखो, प्राणी मात्र में परमात्मा देखो, हर जीव भगवान है। अरे जिन्हें तुम पापी कह रहे हो वो हमसे पहले मोक्ष जा सकते हैं, जिन्हें हम अधर्मात्मा कह रहे हैं, जिन्हें हम पापी कह रहे हैं, जिन्हें हम मांस भक्षण करने वाले कह रहे हैं, जिन्हें हम मदिरा सेवन करने वाला कह रहे हैं, वो भी एक जीव है, समझ का फर्क है। तुम बैठे रह जाओगे तुमसे पहले मोक्ष चले जाएंगे। मत करो किसी से घृणा। समझ में आ गई बात? धारणा समझ में आ रही है? अवग्रह का विषय बने यहां नहीं पहुंचे, अवग्रह और ईहा हो, अवाय नहीं हो, अवग्रह ईहा और अवाय हो, धारणा तक नहीं पहुंचे, समझ में आ रही है बस। और धारणा तक पहुंचेगा तो स्मृति में आ पाएगा, नरक में जाकर के भी स्मृति का विषय हो सकता है। ठीक है, चार हो गई है, अवग्रह ईहा अवाय धारणा, इनके माध्यम से किसे जाना जाता है। उमा स्वामी आचार्य के सूत्र पढ़ रहा हूँ, देखो क्या कह रहे हैं आचार्य देव। बहु बहुविध, बोलिए बहु बहुविध क्षिप्राणि श्रतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम इसमें शब्द एक थोड़ा सा फर्क है जो हमें स्मृति में है उसकी अपेक्षा से फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है, शब्द थोड़ा सा भिन्न है। बहु बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त, ये श्रुत नीचे नीचे दिया है, देखो आप चौथे नंबर पर नीचे दिया है इसका परिवर्तित रूप, माने ये जो सूत्र है इस सूत्र में इतनी जगह पर परिवर्तन अपने को कई जगहों पर दिखेंगे, अलग अलग किताबों में छपे हैं अलग अलग सूत्र, मंत्र यही सूत्र जब कई पुस्तकों में टैली करते हैं हम तो एक जगह पर मिलता है बहु बहुविध क्षिप्राणि फिर श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम, और ऊपर क्या लिखा है यहाँ, बहु बहुविध क्षिप्राणि श्रिता संदिग्ध ध्रुवाणाम सेतराणाम, अर्थ वही है, चिंता नहीं करें आप, छह बातें कही है यहाँ, फिर सेतराणाम कह करके छह और कह दी है, टोटल 12 बातें हो जाएगी। पहली बात है बहु, बहु तो जानते ही सबके घरों में है, उन बहु की बात नहीं, बहुओं की बात नहीं है अपने क्या। हाँ अच्छा हुआ ख्याल में आ गई बात, नहीं तो वो पीछे बैठे उनको तो टेंशन ही हो गई थी कि हमसे ज्यादा बहु ने बाजी मार ली यहाँ। सत्वार सूत्र में उमा स्वामी आचार्य भी बहुओं की बातें करते हैं, सासुओं की नहीं करते। बहु, बहु मतलब बहुत सारे, बहुविध, सेकंड वर्ड क्या है, बहुविध माने बहुत प्रकार के। क्षिप्र, क्षिप्र माने हैं छिपा हुआ, क्षिप्र माने छिपा हुआ। क्षिप्र के बाद में एक और शब्द दिया है अनिश्रित, अनिश्रित माने नहीं, क्षिप्र माने शीघ्र, सॉरी क्षिप्र माने क्या, फास्ट शीघ्र, और अनिश्रित माने है छिपा हुआ। बहु मतलब बहुत सारे, बहुविध मतलब बहुत प्रकार के, क्षिप्र माने शीघ्र, फास्ट फास्ट जो चीज दिखती है। फिर अनिश्रित, अनिश्रित अनिश्रित मतलब छिपा हुआ, अनिश्चित जिसका ढका हुआ है, ढका हुआ छिपा हुआ प्रकट नहीं है। फिर अनुक्त, यहाँ क्या है, अनुक्त नीचे नीचे अनुक्त शब्द दिया है, और यहाँ दिया है असंदिग्ध, माने अनुक्त का मतलब नहीं कहा गया, असंदिग्ध का मतलब भी ऐसा समझ लो जिसके बारे में संशय नहीं है, नहीं कहे नहीं कहा गया, ये अर्थ है वहां। और ध्रुव, ध्रुव मतलब तो स्थिर, स्थिर है ना। फिर आगे शब्द दिया है स इतराणाम सेतराणाम, माने ऑपोजिट। ये जो छह वर्ड कहे हैं इन छह को और छह के ऑपोजिट छह को, माने 12 बातें हो गई कुल, इन 12 बातों को मती ज्ञान जानता है। अभी देखिए सुनिए, घबराना नहीं, थोड़ा सा बात हम आपको मती ज्ञान के भेदों की बताना चाह रहे हैं, ज्यादा लंबे समय तक नहीं बतलाऊंगा और ज्यादा उलझाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग पहुंच जाएं सूत्र नंबर 25 26 27 28 29 30 तक पहुंच जाएंगे। मुझे पता है क्या करना है, कैसे समझाना है, कुछ कठिन नहीं है मनोज भाई, क्योंकि कल 33 पूरे करने हैं ना, कल अंतिम दिवस है अपना, खेलो दिवस के काले। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ से, छह हो गई, फिर छह के बाद में क्या कहा, छह इनके ऑपोजिट लगाना, माने बहु का ऑपोजिट होगा सास, नहीं ओ सॉरी एक बहु का ऑपोजिट सास नहीं, बहु का ऑपोजिट एक, बहु मतलब बहुत सारे और एक मतलब एक सिंगल, बहु विद माने बहुत प्रकार के, इसका ऑपोजिट एक प्रकार का, क्षिप्र का मतलब था फास्ट और अक्षिप्र का मतलब था स्लो, अक्षिप्र उसका ऑपोजिट करना, फिर अनिश्रित माने ढका हुआ और निश्रित माने ओपन, फिर अनुक्त और उक्त कहा गया और बिना कहा गया, ठीक है, अध्रुव और ध्रुव, इस तरह से ये बारह बातें हो गई। इन बारह बातों को मति ज्ञान जान सकता है, इन बारह प्रकार की बातों का अवग्रह हो सकता है, क्या कहा, बारह बातों का अवग्रह हो सकता है, ये बारह बातों के संबंध में यह हो सकती है, इन बारह बातों के संबंध में अवाय हो सकता है, ये बारह वस्तुएं पदार्थ ये सब हमारी धारणा का विषय बन सकते हैं। सारी चीजों को बांट दिया इन्होंने, दुनिया की सारी बातें इनमें गर्भित हो गई है। पदार्थों को आप सिंगल सिंगल जानो कि आप ग्रुप में जानो, इंडिविजुअल हाथी को अलग जाना, घोड़े को अलग जाना, हाथियों के समूह को अलग जाना और हाथी घोड़ों वगैरह के समूह को अलग जाना, सेना नहीं, सेना में हाथी घोड़े ऊंट आदि सब हैं, एक साथ हमने का जुलूस बहुविध, एक साथ जानने में आ रहा है ना, मति ज्ञान का प्रयोग है। सिंगल सिंगल बातों को भी जान लेता है, कभी कही हुई बातों को जानता है, कभी बिना कही हुई बातों को जानता है, कुल मिलाकर के कितने प्रकार हो गए यहाँ तक, मैं 336 बतलाने वाला हूँ अभी, कितने 336 याद होंगे अभी, 336 याद करने दिनेश भाई, 336 भेद किसके, मति ज्ञान के कितने भेद हैं, 336 कैसे होंगे, 336 कैसे कर दिए, पर इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, देखो इसमें लिखा है आगे अर्थस्य, आगे सूत्र क्या है, अर्थस्य, अर्थस्य माने अर्थ, अर्थस्य माने अर्थ माने पदार्थ, हिसाब ये जो बारह बातें जो कही है ना अभी ऊपर, ये सब बारह प्रकार के पदार्थ हैं, बहुत प्रकार के पदार्थ हैं, बहुविध प्रकार है, ठीक है ना, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जैसे ट्रेन फास्ट भाग रही है, दिख गई आपको, विषय बन गई चक्षु इंद्रिय का, एकदम बहुत तेज स्पीड से निकली और आवाज आई, कर्ण इंद्रिय का विषय बन गई, हमने पहचान मति ज्ञान का प्रयोग है। तो मति ज्ञान के माध्यम से इन बारह प्रकार की वस्तुओं को जाना जा सकता है, ठीक है, बारह का अवग्रह, बारह के ईहा, बारह का अवाय, बारह का धारणा, कितने भेद हो गए, 48 हो गए, इज इट क्लियर, कठिन तो नहीं है, 48 हो गए ना। अब ये जो 48 जो प्रकार कहे हैं, ये 48 प्रकार में अभी आप करो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी टाइम सिक्स, मन 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 से भी, तो कितना हो जाएगा, 288 अभी अभी कैसे लगेगा, देखो ऐसा समझो, मति ज्ञान कैसे होता है, तो कहा मति ज्ञान स्पर्शन इंद्रिय से भी होता है, मति ज्ञान रसना इंद्रिय से भी होता है, मति ज्ञान घ्राण इंद्रिय से भी होता है, चक्षु इंद्रिय से भी होता है, कर्ण इंद्रिय से भी होता है, मन से भी होता है, कैसे होता है ना मति ज्ञान, किसी चीज को देख करके जाना तो चक्षु इंद्रिय से मति ज्ञान हुआ, किसी विषय को सुन करके जाना तो कर्ण इंद्रिय से मति ज्ञान हुआ, किसी पदार्थ को छू करके जाना तो स्पर्शन इंद्रिय से मति ज्ञान हुआ, पॉइंट समझ रहे हैं आप, थोड़ा सा देखो हंसने की बात नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा सीरियस होकर के सुने, मुझे पता है यहाँ संभावना प्रचला की ज्यादा चल रही है, नहीं मनोज भाई क्या ऐसे क्या देख रहे हैं आप, क्या कह दिया मैंने, यहाँ संभावना थोड़ी प्रचला की ज्यादा चल रही है, इस प्रकरण में प्रचला क्या होता है, निद्रा, ये क्या क्या निद्रा है, प्रचला निद्रा का प्रकार है, कितने प्रकार की होती है निद्रा, पांच, पांच प्रकार की है निद्रा, मनोज भाई निद्रा पांच प्रकार की है, महेश भाई पांच प्रकार की निद्रा, फर्स्ट प्रकार की निद्रा का प्रकार है जिसका नाम है प्रचला, ये पहले प्रकार की नींद है, ये पहले प्रकार की नींद वाला अभी कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़े समय में संभावना लग रही है, हैं? आप लोगों के खिले हुए चेहरे बतला रहे हैं कि अब संभावना नहीं है। ये प्रचला नहीं, सच में प्रचला वाली जो निद्रा है, ये प्रचला निद्रा वाले लोग मैक्सिमम प्रवचन सभाओं में दिखते हैं क्या, क्योंकि आकर के बैठते हैं। इससे ज्यादा पीसफुल जगह कहीं नहीं मिलती। घर में तो बच्चों की चेंचे पे चलती है क्या, पीसफुल, एक सुई भी गिरे ना तो आवाज आ जाए, इतना पीस क्या। और फिर कोई पंडित जी आकर के यदि उनकी आवाज अच्छी हो ना तो इतनी अच्छी आवाज है कि नींद बहुत अच्छी आती है क्या। अभी गहरी नींद की बात नहीं कर रहा, अभी तो उसकी बात कर रहा हूँ कि नींद की नींद, और बगल वाला कहे कि सो रहे हो, नींद जग रहा हूँ मैं तो। उस निद्रा का नाम है प्रचला, नींद नहीं है, ठीक है ना, जबकि है, जबकि भी क्या कहें, ऊंग है, ऊंग क्या मतलब क्या कहें उसको, और उसमें सुन भी रहा है, और उसमें यदि हम आपसे पूछ ले रहे हैं कि मती ज्ञान के कितने भेद बतलाए तो तुरंत कह रहे 336। अरे तुम तो उंगरे से कैसे बता दिए, अरे मैं तो सुन रहा हूँ, तुम्हें लगता है ऐसा, सुन रहा हूँ मैं सब, कैसे पकड़ लिया है बात को, कौन सा भेद था वो, प्रचला, सब समझाने, रहने दो अभी अपन तो सूत्र पढ़ते हैं आगे, है ना। सुन सुनाए मैंने कभी बताए होंगे पहले आप लोगों को, ऐसी बात नहीं हो तो आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए मुझे मौका मिल जाता है दोबारा बताने का। पहला है प्रचला, दूसरा है निद्रा, निद्रा होता है नॉर्मल नींद, सुन लो, दो मिनट लगेगी, दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। निद्रा मानिए सामान्य नींद, उबासी आना ये प्रचला का काम है, ठीक है, जबकि लेना ये प्रचला का काम है, आंखें खोलने की कोशिश करना है लेकिन वो खुल नहीं रही है, वो है प्रचला। अभी जो निद्रा है उस निद्रा में तो सो ही जाता है, निद्रा कर्म का उदय आएगा तो फिर आप बैठे नहीं रहोगे, समूह में बैठे हो काफी देर तक, वो कर रहे थे, बैठे थे, खींचे जा रहे थे, सब लोग बैठे हैं, फिर एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें आप कहते हो यार मैं तो सोऊंगा यार, मैं नहीं बैठ सकता, अब वो फिर बैठ नहीं सकता, फिर वो तो पड़ेगा, ये क्या स्थिति हो गई, निद्रा। सेकंड नंबर हो गया, थर्ड नंबर है प्रचला, प्रचला प्रचला को डबल कर दिया सतीश भाई, पहला था प्रचला, दूसरा है निद्रा, तीसरे नंबर पर है प्रचला, प्रचला डबल, ठीक है, डबल वाली है तीसरे नंबर पर। अच्छा, ये जो तीसरे नंबर पर जो डबल कही है इसमें क्या पोजीशन बनती है, इसमें पोजीशन ये होती है कि रात को सोते हुए नींदों में मुंह से लार रहने लगती है, नींद आती है तो उस नींद के काल में, निद्रा के काल में कभी कभी बड़बड़ाने लगता है, कुछ बोलने लगता है, कुछ भी बातें करता है, बोलता है, तो बगल में सोता हुआ पार्टनर पूछे कि क्या कह रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा क्या, ये कौन सी निद्रा है, प्रचला, प्रचला। इस प्रचला प्रचला निद्रा में क्या, इसको कुछ होश नहीं रहता, सोते सोते हाथ पांव पर चाटेगा, कभी कभी बच्चे होते हैं लात मारते हैं, लात क्यों मार रहा है, मैं कहाँ मार रहा हूँ, जानबूझ के थोड़ी ना करता है, हाथ पांव पछाड़ता है, मुंह से लार बहती है, बड़बड़ाता है, ऐसे सब काम प्रचला प्रचला में होते हैं, और छोटे बच्चे सुसु कर देते हैं मिस्टरों में, तो ये तीसरे नंबर की है निद्रा। चौथे नंबर की एक निद्रा होती है जिसका नाम है महानिद्रा, डबल निद्रा नाम है उसका, क्या कहेंगे, निद्रा 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 निद्रा, फोर्थ नंबर पर। ये कैसी नींद होती है, ये नींद ऐसी होती है उठाने से भी नहीं उठे, कोई व्यक्ति सो रहा है और सोते सोते उसको उठाया हमने, भैया उठ जाओ उठ जाओ क्या, और वो उठ करके हाँ उठ रहा हूँ, फिर सो गया क्या, उठना चाहता था उठ नहीं पाया। रात को बच्चे कह करके सोते हैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठाना है, 4 बजे उठा देना, अभी तो सो रहा हूँ, सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ूंगा, वो कौन से निद्रा, 4 बजे उठ के उठने उठ जाएंगे कोई बात नहीं, अब 4 बजे तो उठता नहीं है, 6:30 बजे 7 बजे उठ करके चिल्लाता है घर पे अपने फादर पर मदर पर, آپ نے اٹھایا کیوں نہیں میرے کو؟ اچھا تیرے کو اٹھایا تو تھا, کئی بار تو اٹھا اٹھا کر کے گئے, بیٹھے تھوڑے نہیں تیرے پاس میں, اٹھا ہی نہیں, پھر آپ نے اٹھایا ہی نہیں, اٹھانے سے بھی نہ اٹھے, یہ چوتھی ندرا ہے. کیا نام تھا کورس کا؟ ندرا. ٹھیک ہے, پانچویں نمبر کی ایک ندرا ہے جسے کہتے ہیں سیان گردھی. سیان گردھی, یہ سیان گردھی آدھا سو, اسکول اسکول لکھتے ہیں نا, آدھا سو پھر آدھا سو, اور یہ یمراج والا آ کی ماترا, اور گردھی گ کے نیچے ری کی ماترا, اور پھر دھی ردھی, ردھی سے گردھی. سیان آدت آدت یا ن, سیان سیان گردھی. کوئی بات نہیں, نہیں سمجھ میں آئے تو آپ کو کیا کرنا ہے, کس کو پڑھانا ہے, سن لیا نا بس آپ نے. سیان گردھی شبد کیا ہوتا ہے, اس کو انگلش میں سرچ کریں گے آپ اچھا شبد ملے گا, کوئی نہ کوئی بیماری ہے, ڈاکٹر لوگ جانتے ہیں. نہیں 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 نہیں, کوما کی کہاں بات کر رہے ہو آپ, سیان گردھی نام کی ایک ایسی بیماری ہے, بیماری کہتے ہیں لوگ اس کو, اپن تو شاستروں میں کہہ رہے ہیں نیند ہے بھیا, یہ تو پانچویں پرکار کی ہے. یہ ایسی نیند ہوتی ہے جس نیند میں ویکتی چلنے لگتا ہے, سلیپ واک. سیان گردھی سلیپ واک, اس کو کچھ اور بھی کوئی نام ہوگا کوئی میڈیکل سائنس میں, نارکولیپسیکم, نارکولیپسی, نارکولیپسی بتلا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, مانے نارکولیپسی. یہ ایک ایسی ندرا ہے جس ندرا میں ویکتی آٹھ بجے سویا, نو بجے سویا شام کو رات کو, اور نیندوں میں اٹھا گیارہ بارہ بجے, اور اٹھ کر کے دروازہ کھولا, اتر کر کے نیچے گیا, گیٹ پر گیا, باہر جا کر کے گاڑی کھولی, گاڑی میں جا کر کے بیٹھا, گاڑی ڈرائیو کرے, گاڑی لے کر کے چلے جائے, کہیں جا کر کے کہیں کسی کی ہتیا کری آئے, قتل کری آئے, بینک لوٹ آئے, چوری کری آئے, ڈکیتی کری آئے, کچھ بھی کام کری آئے, اور کر کے واپس گاڑی لا کر کے پارک کرے, اور اوپر جا کر کے سو جائے, اور صبح اٹھنے پر کوئی پوچھے کہ رات کو گیارہ بارہ بجے کہاں گئے تھے, کہ کہیں نہیں میں تو جلدی سو گیا تھا ابھی اٹھاؤں. ایسی ندرا کون سی ندرا ہے؟ سیان گردھی, پانچویں نمبر کی ندرا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی پانچوں پرکار کی ندرا. چلو کوئی بات نہیں, یہ سیان گردھی ندرا کا پریوگ ایک پچیس سال پہلے ایک مووی میں دکھایا تھا, نیل کمل نام کی مووی تھی راج کمار کی. لو پیچھے سے آ رہی آواز, وحیدہ رحمان راج کمار. کیا تو سب آئے تو سب انڈیا سے ہی ہو آپ لوگ, اور اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جو آپ کا زمانہ تھا, تو یہ سب اس پکچر ایسا تھا, اس کو وہ سانگ بجتا تھا اور وہ اس کے چل دیتی تھی, وہ جس سے پیار کرتی تھی اس کو چنوا دیا گیا تھا, راجکمار کو اس نے اینٹوں میں چنوا دیا تھا اس کو کسی نے آدیش دے کر کے, اور وہ وہاں اس کا کنکال تھا, وہ وہاں آواز ہوتی تھی بجتا تھا سانگ اور اٹھ کر کے چل دیتی تھی. تو یہ جو ایسی ندرا ہوتی ہے وہ سیان گردھی نام کی ندرا ہے. ایسی ندرا منشیوں میں بھی ہوتی ہے, میں دو تین لوگوں کو جانتا ہوں صاحب, ایسا میں نام بتلانا نہیں چاہتا ہے, لیکن ایسے لوگ بھی جن کو نیندوں میں چلنے کی عادت ہے, میرے کو بتلایا, ان کے ساتھ میں رہنے والے جو روم پارٹنر تھے انہوں نے بتلایا کہ ہم رات کو سوتے تھے تو روم کو اندر سے لاک لگا کر کے سوتے تھے چابی چھپا کر کے, کیونکہ کئی بار ایسا ہوا کہ نیندوں میں اٹھ کر کے چل دیتا تھا, اب چل دیتا تھا تو پتا نہیں لگتا تھا, پھر ہم اس کو پکڑ کر کے ایسے گھما دیتے تھے واپس گھوم کر کے آ جاتا تھا. ایسا ہوتا ہے, بیماری ہے. ٹھیک ہے, بیماری کیا کہو, کرم کا ادے ہے, درشنا ورنی کرم کا ادے ہے. یہ بات میں نے آپ کو بیچ میں کس لیے کہہ دی, جس سے پرچلا حاوی نہیں ہوں, اس لیے کچھ بات ایسی ہوتی چاہیے نا بیچ میں کہ جس سے کچھ سمجھ میں آئے ہمارے کو. بات بات کیا چلتی تھی اپنی متی گیان کے کتنے بھید, 336 میں سے متی گیان کس کس سے ہوتا ہے, اسپرشن رسنا گران چکشو کرن من چھ سے ہوتا ہے نا. اچھا اسپرشن اندری سے اوگرہ ہو سکتا ہے یا نہیں, ہو سکتا ہے, تو کس بات کا اوگرہ ہو سکتا ہے اسپرشن اندری سے, بولے ان بارہ باتوں کا. اسپرشن اندری سے ان بارہ باتوں کا اوگرہ ہو سکتا ہے. سمجھنا بھائی, کوئی ویکتی پوچھے گا تو اپنے کو ایگزام تو لینا نہیں ہے, ایگزام لینا ہوتا تو آپ 336 یاد رکھتے پھر بھی. لیکن کیونکہ ہم تسوار سوتر پڑھ رہے ہیں نا, اس لیے کوئی ویکتی یعنی ہم سے پوچھے گی پہلا جے پڑھا ہے 336 وید بتلاؤ, تو وی شوڈ نو, ہمیں اس بات کا تھوڑا بہت پتا ہونا چاہیے کہ بھائی ہم نے کیا پڑھا ہے تسوار سوتر میں کیا باتیں ہیں. اسپرشن اندری سے بارہ باتوں کا مانے بہو بہو ودھی شیترا نیتر آدی ان سب باتوں کا اوگرہ ہوا. بارہ پرکار ہو گئے. اسپرشن اندری سے انہی سب بارہ باتوں کا ایہا ہوا. تو اسپرشن اندری سے بارہ پرکار کا اوگرہ, اسپرشن اندری سے بارہ پرکار کی ایہا, اسپرشن اندری سے بارہ پرکار کا اوائے, اسپرشن اندری سے بارہ پرکار کی دھارنا. کتنے ہو گئے؟ 48 ہو گئے. اب رسنا اندری سے ان بارہ پرکار کا اوگرہ, رسنا اندری سے ان بارہ پرکار کا ایہا, رسنا اندری سے بارہ پرکار کا اوائے, رسنا اندری سمبندھی بارہ پرکار کی دھارنا نہیں ہے آپ کے گیان میں. رسنا اندری سمبندھی دھارنا کا وشے بنتا ہے تب جا کر کے آپ ایک مہینے بعد بھی کہتے ہو یار وہ چیز بناؤ جو اس دن بنائی تھی. تو آپ کی دھارنا میں وہ رسنا اندری کا وشے ہے. آپ کسی مہمان کے یہاں جاتے ہو اور ان کے یہاں جا کر کے کہتے ہو کہ یار 2 سال پہلے آپ نے گلاب جامن بنا کے کھلائے تھے وہ آج بھی, اس کا مطلب وہ رسنا اندری سمبندھی دھارنا گیان کا وشے ہے نا. تو اسپرشن میں لگاؤ, رسنا میں لگاؤ, گرہن میں لگاؤ, چکشو میں لگاؤ, کرن میں لگاؤ اور من سے لگاؤ کہ بارے بھید پر وغیرہ یہ آواز دھارنا 288 ہو گیا. از اٹ کلیئر؟ کٹھن تو نہیں ہے. 288 بھید دیکھو آگے 17 نمبر کے سوتر ہو گیا. 18 سوتر دیکھو, ویجنسیا وغیرہ بولیے, ویجنسیاوگرہ کیا کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں. ویجنسیاوگرہ ویجن کسے کہتے ہیں؟ ویجن کہتے ہیں اسپشٹ پدارتھ. ویجن شبد وغیرہ کچھ ایسے اسپشٹ کلیئر نہیں ہے, انکلیئر ایسے پدارتھوں کا بولے اکیلا اوگرہ ہی ہوتا ہے. ان میں ایہا نہیں ہوگی, ان میں اوائے نہیں ہوگا, ان میں دھارنا نہیں ہوگی, اوگرہ ہو کر کے چھوٹ جائے گا. بہت لائٹ تھا نا, ہلکا سا کچھ بنا اوگرہ ہو کر کے چھوٹ گیا. نہ ایہا نہ اوائے نہ دھارنا, کچھ مطلب نہیں ان میں. کیا کہا؟ ویجن سے اوگرہ, ویجن مانے اسپشٹ پدارتھوں کا اکیلا اوگرہ ہی ہوتا ہے. اور ایسا اوگرہ نہ چکشور انندری ابھیام, کیا نہ مانے نہیں, چکشو مانے چکشو سے نہیں ہوتا ایسا اوگرہ. انندری ابھیام مانے من سے بھی نہیں ہوتا, مانے چکشو اور من کو چھوڑ کر یہ ویجن اوگرہ ہوتا ہے. چکشو اور من سے یہ ویجن اوگرہ نہیں ہوتا. تو ویجن اوگرہ کس کس میں ہوگا؟ باقی چار میں ہوگا, اسپرشن رسنا گرہن اور کرن. ان چار سے ویجن اوگرہ ہوگا, صرف اوگرہ ہوگا, اوائے دھارنا نہیں ہوگا, یہ اوائے دھارنا نہیں ہوگا. تو یہ چار سے ہوا, چار اندریوں سے بارہ پرکار کے پدارتھوں کا ویجن اوگرہ مانے 48. بس 336 ہو گئے. کچھ سمجھ میں آیا؟ تھوڑا تھوڑا آیا کیا؟ بس تھوڑا تھوڑا آ گیا تو آگے بڑھتا ہوں میں, کیا کرنا ہے. آ گیا تھوڑا تھوڑا سا سمجھ, اتنا سمجھ میں آ گیا ہمارے کو کہ بھائی یہ جو چرچا چل رہی ہے اس چرچا کے مادھیم سے متی گیان کے 336 وید بتلائے جا رہے ہیں. چلو شروت گیان کسے کہتے ہیں؟ واٹ از شروت گیان؟ سننے سے. کل بھی ہم نے کہی تھی سدھار لو, آپ کی دھارنا میں بیٹھا ہے اس لیے کل ہم نے سمجھایا. اس کے باوجود آپ کے دھارنا میں جو پہلے سے بیٹھا تھا نا وہی بیٹھا ہے. श्रुत ज्ञान माने सुनने वाला ज्ञान नहीं है, श्रुत ज्ञान माने सुनने वाला ज्ञान नहीं है। एक माला का जाप करो तब जाके आपके दिमाग में जो बैठा है श्रुत ज्ञान माने सुनने वाला ज्ञान वो बात निकलेगी। मैंने ये तर्क दिया था आपको, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दोनों ज्ञान एक इंद्रिय के भी होते हैं, दो इंद्रिय के भी मति और श्रुत ज्ञान होते हैं, तीन इंद्रिय के भी मति श्रुत ज्ञान होते हैं, चार इंद्रिय के भी मति श्रुत ज्ञान होते हैं, लेकिन एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रियों के कर्ण नहीं होता, शब्द नहीं सुन सकते। कल तो कही थी मैंने बात, चींटियों को सुनाने लगते हैं, सुन नहीं सकती ये चींटियां भाई। ये हो गया, क्या कहना चाह रहे थे हम, श्रुत ज्ञान किसका नाम है, परिभाषा देखिए, 20 नंबर का सूत्र देखिए, बहुत सरल है। उमा स्वामी आचार्य बहुत सरल शब्दों में समझाते हैं, श्रुतम अति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम, बोलिए, श्रुतम अति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम, श्रुतम अति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। भोजन थोड़ी ना करके आए हैं आप लोग, भोजन करके आए, भोजन करके आए, दिन में कर लेते हैं, दिन में कर लेते हैं भोजन, सब दिन में कर लेते हैं भोजन, आवाज क्यों नहीं निकल रही है। मैंने तो सुना है भूखे पेट आवाज नहीं निकलती, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ओ सॉरी, आधा आधा बोलते हैं, श्रुतम अति पूर्वम, श्रुतम अति पूर्वम द्वयनेक, द्वयनेक द्वादश भेदम, द्वयनेक द्वादश भेदम, श्रुतम अति पूर्वम द्वयनेक द्वादश वेदम। हो गया सरल, देखो श्रुतम यानी श्रुत ज्ञान, किसकी बात कर रहे हैं आप, श्रुत ज्ञान की बात कर रहे हैं। कैसे होता है श्रुत ज्ञान, बोले मति पूर्वम, फर्स्ट मति ज्ञान होगा, सेकंड श्रुत ज्ञान होगा, पहले मति ज्ञान हो चुका होगा तो श्रुत ज्ञान होगा, मति ज्ञान होगा वो श्रुत ज्ञान में कन्वर्ट होगा, मति ज्ञान होगा वो आगे बढ़कर के श्रुत ज्ञान की तरफ बढ़ेगा, समझना है, मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, श्रुतम मति पूर्वम, मति ज्ञान पूर्वक है, ठीक है। तो ये जो श्रुत ज्ञान है, इस श्रुत ज्ञान के व्यवहार में दो भेद किए जाते हैं, द्वय, द्वय शब्द है ना आगे, द्वय माने बे, गुजराती में बे, फिर वे के बाद में क्या लिखा, द्वय के बाद में क्या लिखा, अनेक और द्वादश। क्या देखो, बहुत ऐसे सूत्र होते हैं, सूत्रों में किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं, कैसे मर्म छिपे होते हैं, आपको विशेष बातें तो दूसरे अध्याय में मिलेगी नेक्स्ट ईयर, क्या बहुत महत्वपूर्ण है वो भी, बड़ा गजब का है वो, दूसरे अध्याय की चर्चा भी। श्रुतम माने श्रुत ज्ञान, मति पूर्वम माने मति ज्ञान पूर्वक होता है, द्वय माने दो भेद हैं उसके, अनेक और द्वादश, एक का नाम अनेक और दूसरे में द्वादश माने बारह है, वेदम वेद है, नहीं समझ में आया, ऐसा समझो श्रुत ज्ञान के दो भेद हैं, सबसे पहले क्या था, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, श्रुत ज्ञान के दो भेद होते हैं, पहले भेद के अनेक भेद हैं और दूसरे भेद के बारह भेद हैं। क्या कहा, श्रुत ज्ञान के दो भेद, एक है अंग बाह्य, क्या कहा, अंग बाह्य, अंग अंग बाह्य, दूसरे का नाम है अंग प्रविष्ट, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट नए शब्द हैं, कोई बात नहीं, नया शब्द पहली बार सुना, अवग्रह हुआ, پھر آپ کو لگا کیا بول رہے ہیں, ایہا ہوئی کیا؟ پھر ایہا ہونے کے بعد میں آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ اچھا یہ انگ بائی یہ کہہ رہے ہیں, آوائے ہو گیا کیا, انگ پروشت کہہ رہے ہیں, یہ کلیئر سمجھ میں آ گیا. تو کہاں تک پہنچ گئے؟ آوائے تک پہنچا ہے ابھی, لیکن یہ بات کل تک یاد رہے گی تو دھارنا کہلائے گی. کیا کل تک کیسے یاد رہے گی؟ اس کا اپائے کیا ہے منوج بھائی؟ اس کا اپائے یہ ہے کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد میں ہاتھ ہو اسٹیئرنگ پر, نگاہ ہو روڈ پر, لیکن جوان سے بغل میں بیٹھے ہوئے سے چرچا کریں اپن کہ دو بھید کہے تھے شرتیان کے, ایک انگ پروشت اور ایک انگ بائی. انگ بائی کے انیک بھید ہیں اور انگ پروشت کے بارے بھید ہیں. پتا ہے کون سے؟ یہ وہ آگئی جنوانی کی بات, پوری جنوانی آگئی یہاں پر. انگ بائی, انگ بائی میں اتراجیان دشوے کالک, یہ سب انگ بائی ہیں کیا؟ جتنے اترکت بائی ہیں نا وہ سب انگ بائی ہیں, انگوں میں شامل نہیں ہیں. اتراجیان آدھی دشوے کالک آدھی یہ انگ بائی ہیں, شروتیان کا بھید ہے, بہت سارے ہیں ایسے انیک ہیں. اور دوادش یہ کیا ہے؟ بولے دوادش انگ, آچار انگ, سوتر کرتا انگ, استھان انگ, ویاکھیا پرگتی, جاتر دھرم کتا, اپاسک ادھیان, انتکر دشا, انتر اپاسک دشا, پرشن ویاکرن, وپاک سوتر, درشتی واد. سنے یہ شبد کبھی؟ آچارنگ تو سنا ہوگا, آچارنگ سنا ہے نا. آچارنگ فرسٹ ہے اور میں نے اس کے آگے کے 11 اور بولے ہیں, ٹوٹل 12 ہے. یہ ٹوٹل 12 کیا کہلاتے ہیں؟ دوادشانگ, دوادش بھیدم, بارہ بھید. انگ بائی اور انگ پروشت یاد ہو گیا نا؟ انگ بائی کے انیک بھید اور انگ پروشت کے بارہ بھید. ختم ہو گئی چرچا, بس دیوی دو اودھی. اودھی دو پرکار کا ہے. آگے اودھی جان کی چرچا شروع کرتے ہیں. کیا کہا؟ شروتم متی پوروم دوینک دوادش بھیدم. یہ سمجھ میں آ گیا آپ سبھی کے؟ شروت گیان متی گیان پوروک ہوتا ہے, اس کے دو بھید ہیں, ایک انگ بائی ہے اس کے انیک بھید ہیں, ایک انگ پروشت اس کے دوادش بھید ہیں. ٹھیک ہے؟ شروت گیان کو ہاں
مان اور اندریوں کے سے ہوتے
ہیں. ہاں
صحیح. متی مان اندریوں کا بات ہے.
ہاں کب آ جائے گا؟ سنو دیکھو بہت سندر بات ہے, میں سمجھاتا ہوں اس کو, اس کو سمجھ لو آپ ایک بار اس پرکرن کو. دیکھو جب ہم نے کہا من کی پریبھاشا بتلائی, ایک چیز من کیا چیز ہے, تو ہم نے کہا من جو ہوتا ہے وہ من تو ہوتا ہے کہ ہت ہت کی بدھی والا وہ ہوتا ہے من. اب پرشن کھڑا ہوتا ہے کہ ایک مچھر آیا ہمارے پاس میں آ رہا تھا, پرویز بھائی آپ نے پوچھا تھا, ایک مچھر آیا ہمارے پاس میں, ہم نے اس کو ایسے اڑایا. ٹھیک ہے, ہم نے ایسے اڑایا, ابھی اس کو ٹچ نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا, وہ اڑ کر کے چلا گیا. اس کو لگا یہاں خطرہ ہے, فیل ہوتا ہے نا اس کو, فیل ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو ہم یہ پوچھ رہے ہیں اس کے من نہیں تھا تو اسے کیسے پتا لگا, من نہیں تھا تو اس نے اپنا راستہ کیسے بدلا. چھوڑو مچھر کی بات چھوڑو, ہم بات کر رہے ہیں ایک چیٹی, چیٹی کیڑی کیا کہتے ہیں گجراتی, کیڑی کہتے ہیں, کیڑی. اب وہ جو کیڑی ہے وہ کیڑی آپ کے نزدیک آ رہی تھی, آپ نے انگلی لگا دی, ادھر آتے آتے وہیں سے اس نے راستہ بدل لیا, اس کو لگا آگے خطرہ ہے, اس نے راستہ بدل لیا. تو اس نے یہ خطرہ جان کر کے جو راستہ بدلا, تو یہ من کے بنا بدل لیا اس نے راستہ؟ خاص من نہیں ہے, من نہیں ہے اس کے, کیڑی کے پاس میں من نہیں ہے, کیڑی تین اندری ہے, کیڑی تین اندری ہے, اس کے پاس میں من نہیں ہے. کیسے ہوا یہ کام؟ اس کام کو کرنا شروت گیان کا کام ہے, یہ شروتیاں ہیں. ابھی آپ اس کی ڈیفینیشن چاہتے ہیں, श्रुति ज्ञान की डेफिनेशन चाहते हैं कि साहब ये कुछ क्राइटेरिया बतलाओ इनका, इनको कैसे डिफाइन करें, अपन अलग अलग कैसे डिफाइन करें, फॉर मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान एंड मन, इन सबका अलग अलग सेपरेट वर्क क्या है इनका, इन तीनों को हम किस तरह से पहचान पाएंगे, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान एंड मन, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और मन, इन तीनों को कैसे पहचाने हम, डिफाइन कैसे करें इनको अलग अलग। देखो मति ज्ञान तो समझ में आ गया, इंद्रिय और मन बस झगड़ा खत्म, आंख से देखा मति ज्ञान है, कान से सुना मति ज्ञान है, ठीक है। अब श्रुति ज्ञान क्या करता है, कान से सुना, समझना कान से सुना ये तो श्रुति ज्ञान है, अब सुन करके हमने जो अर्थ लगा लिया ये श्रुति ज्ञान है, समझे। श्रुतम मति पूर्वम शब्द दिया है ना, श्रुति ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसका मतलब इंद्रिय से प्रवृत्ति होने के बाद जहाँ इंद्रियों का योगदान नहीं हो और ज्ञान काम करे वो श्रुति ज्ञान है, नहीं बिना मन के भी श्रुति ज्ञान कर रहा है। चींटी आई उसने टच किया, टच होने के बाद में उसने बदल गई, टच होना स्पर्शन इंद्रिय माने मति ज्ञान था, बदलना ये मति ज्ञान नहीं है क्योंकि इंद्रिय विषय नहीं है, लेकिन वो है उसके बाद, वो फर्दर प्रोसेस है। अभी मन का काम जो होगा वो इससे भी एक स्टेप ऊपर चल के होगा, यहां से एक स्टेप और ऊपर जाएंगे। पहले इतना मति और श्रुति में अंतर समझ में आया क्या, पांच इंद्रियां के माध्यम से जो काम हुआ वो मति ज्ञान, इंद्रियों से जो काम हुआ वो मति ज्ञान, कर्ण इंद्रिय में जो शब्द पड़ा वो मति ज्ञान, ठीक है, सुनकर के जो आपने आगे किया, देख करके जो आपने रिएक्ट किया ये श्रुति ज्ञान, हाँ रिफ्लेक्ट कह सकते हो उसको, रिएक्ट किया उसके लिए जो भी स्पर्शन के बाद, रस के बाद, गंध के बाद। देखो आपने हलवा बनाया दूधी का, पंडित जी को खिलाया, रसना इंद्री का विषय बना, रसना इंद्री का विषय बना, इसको कहेंगे हम मति ज्ञान। और रसना इंद्री का विषय बनने के बाद में कहा बहुत अच्छा, ये जो अच्छापन कहां से आया, क्या ये अच्छा है, ये खराब है, और चाहिए, ये बात कहां से आई। अभी 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 आपने एक्चुअल में क्या है, प्रॉब्लम ये है हमारे पास में हर जगह पर मन इन्वॉल्व है, हमारे पास में मन होने के कारण हम बिना मन की पोजीशन को पकड़ नहीं पा रहे हैं, हमारे सारे काम मन से होते हैं, इसलिए मैं आपको अपने ऊपर घटित करके नहीं बतला रहा हूं, जिनके मन नहीं है उनको देखोगे तो उनके ये काम श्रुति ज्ञान से हो रहा है, कीड़ी में जो काम हो रहा है, मच्छर में जो काम हो रहा है, मच्छर ने कैसे काम किया, मच्छर आया, देखो एक मच्छर, इधर दीपक जल रहा है, दीपक की लौ है, आग जल रही है उसमें, हम सब जानते हैं रोशनी प्रकाश की तरफ पतंगा उड़ता हुआ चला आता है, रोशनी के लिए चार इंद्रिय है, वो दौड़ता हुआ आया उधर से, ये चक्षु इंद्रिय का विषय है, कौन सा ज्ञान है, मति ज्ञान, चक्षु इंद्रिय का विषय मतलब मति ज्ञान है, आकर के उसने उस दीपक की लौ को टच किया, गरम लगा, जल गया, एक पंख उसका, स्पर्श हुआ, कौन सा ज्ञान था, मति ज्ञान, देखा वो भी मति ज्ञान, छुआ वो भी मति ज्ञान, और छू करके जो गरम लगा और ये जो हटा ये मति के बाद हुआ, मति के बाद हुआ, ये है श्रुति ज्ञान। मुकुंद भाई
इसमें
मन की जरूरत नहीं है, अभी मन क्या काम करेगा, अब मन का काम इसके बाद वापस नहीं आएगा, अभी ये जो हटा था ये श्रुति ज्ञान तक का काम हो गया था, यदि मन होगा तो दोबारा नहीं जाएगा, और मन नहीं है तो दोबारा जाता है। अभी कहूं मारने की बात, विषय भोगों की तरफ दौड़ता है, क्लब में जाता है, नाच गान करता है। कल तो हमने ऐसे नहीं कह दिया था, अब हम कह रहे हैं हमारी बुद्धि में ये बात आई, अरे अरे ये काम करने योग्य नहीं है, अरे अरे ये मेरे खाने लायक नहीं है, ओ हो ये मैंने कैसे खाया, अब बुरा लगा, हटा वहां से, दूर दूर वहां से हटा, तो कहां तक आया कि जिनवाणी के सानिध्य में आ गया, यहां अब यहां तक आ गया। ये हटने तक का काम तो श्रुति ज्ञान का है, मन तो तब कहलाए जब दोबारा दौड़ के वहां नहीं जाए। मन का काम तो उसके बाद का है ना, अभी आपको चीज अच्छी नहीं लगी आप हट गए, अब अच्छी नहीं लगी थी हट गए थे तो दोबारा वहां क्यों जा रहा है, हित अहित का निर्णय तो करना पड़ेगा ना। आप सोचिए जीवन कभी भी पूरा हो सकता है गिरीश भाई, क्या अमर होकर के कोई नहीं आया है, दिनेश भाई सतीश भाई अमर होकर के कोई नहीं आया है धरती पर, अमरचंद जी भी मरेंगे ना, नाम से क्या होता है, तो नाम निक्षेप का विषय था, तो अमरचंद जी भी मरेंगे, इसका मतलब अमर होकर के कोई नहीं आया है, सबको मरना है। अच्छा किसको कब मरना है ये हमको नहीं पता, मरने के बाद कहां जाएंगे ये भी हमको नहीं पता, अब क्या करना है बोलो, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, भरोसा है कि नहीं है भाई साहब, जाना तो है पक्का, कहाँ जाएंगे, अब जहाँ आपको जाना है वहाँ की टिकट मिल रही है आपके वर्तमान इन परिणामों से, बोलो कहाँ की खरीदनी है, बोलो किधर की खरीदनी, आपको पता नहीं है, हमें पता है ना, बैठा हूँ ना यहाँ, क्या आपके परिणामों के जो पेमेंट है, आपके भावों का पेमेंट कितना है उसके व्याप पर ऑटोमेटिक, भैया देखो कौन सी सीट मिलेगी या हम कुछ नहीं कह सकते, तुम्हारे पास में जितना है वो सब धर दो यहाँ, हम देख लेंगे उसके हिसाब से तुम्हारे को सीट मिल जाएगी। अब तुम्हारे परिणाम कैसे हैं उनके आधार पर सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है सारी, आपके परिणाम अच्छे थे अच्छा हो जाएगा, आपके परिणाम खराब थे खराब हो जाएगा, क्या करना है बोलो किधर जाना है, अपने ऊपर है ये सारी बातें, इसलिए बहुत सावधान रहना। आज तक गलती की तो की, अब नहीं करेंगे, अब समझ आ गई, जब जागो तभी सवेरा, कोई बात नहीं, दुनिया क्या कहेगी, अरे दुनिया क्या कहेगी जो तो ठीक है, भुगतूंगा तो मैं दुनिया के कहने के चक्कर में, भोगना किसको पड़ेगा, नरक में जाकर के डंडे पड़ेंगे, दुनिया क्या कहेगी, कह रहे दुनिया से क्या मतलब है, मेरे चोट पड़ रही है भैया मारो मत मेरे को, पीटो मत मेरे को, तिल तिल करे दे के खंड कौन भुगतेगा, वहां जाकर के मुझे भुगतना पड़ेगा, सावधान रहो, उस समय दुनिया साथ नहीं आएगी, उस समय वाहवा करने वाले साथ नहीं आएंगे, दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दुनिया बहुत स्वार्थी है, हमारी सोसाइटी का क्या होगा, हमारे उठने बैठने का क्या होगा, दूसरों के साथ में हमारे संबंध टूट जाएंगे, कि क्या बात करते हो आप संबंध टूट जाएंगे, आप क्या सोचते हो संबंध आपके ही है, हमारे किसी से संबंध ही नहीं है, हमारे किसी से रिलेशन नहीं है महेंद्र भाई, हम सोसाइटी में उठते बैठते नहीं है, आज की तारीख में आपसे तो अच्छी पोजीशन है हमारी, समाज में भी सोसाइटी में भी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं लोग, सम्मान किसमें है, दो बोतल चढ़ाने में सम्मान है, सुनो आप यदि सोसाइटी में कहीं जाते हैं और आप दिन में भोजन करते हैं बाकी सब रात में करते हैं, एक बार करके देखना ऐसा, पूरी सोसाइटी में हर व्यक्ति आपसे पूछेगा आपने खाया कि नहीं, अरे आपने, अरे पहले इनको दो कि दिन में लेते हैं, कि इन्होंने लिया कि नहीं, कि इनसे भी तो पूछो, अरे ये तो ले लेगा यार, तो समझ में आ रही है बात, जो रात में लेता है प्रकाश भाई क्या उसको कोई नहीं पूछता, कोई वो तो चलेगा उसका क्या है, भाई साहब आपकी वैल्यू बढ़ जाती है क्या, जिस व्यक्ति का थोड़ा बहुत आचरण सुधरता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, दिन में भोजन जैनी का लक्षण है, मध्य मांस मधु का त्याग जैनी का लक्षण है, जैन कौन होते हैं, एक बहुत सुंदर व्याख्यान, पूरा व्याख्यान है यूट्यूब पर मेरा, जैन कौन हेडिंग है, नंबर ध्यान नहीं है मेरे को उसका, भाग दो में है, भाग दो में जैन कौन, जैनी किसे कहें, कौन घंटे का प्रवचन है, किसका नाम जैन, कौन सी चीज का त्याग, कैसे त्याग, किस प्रकार जैन होता है, नाम से जैन, काम से जैन और भाव से जैन, तीन जैन बना दिए मैंने। जैनी तीन प्रकार के महेंद्र भाई, किताब हमने तो दो ही सुने थे, दिगंबर और श्वेतांबर, तुम तीसरा कौन सा लाए, दो ही जैन सुने थे, या फिर श्वेतांबर के दिगंबर के, दिगंबर श्वेतांबर, बस दो ही तो हैं, तुम तीन कौन सा ले आए। यहाँ हमें लगता है तुमने स्थानक वासियों को अलग कर दिया। अरे नहीं भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ, एक जैन तो कुल अपेक्षा से जैन, एक जैन तो वो जैन जो नाम के आगे लगाते हैं जैन, एक वो जैन जो सोसाइटी में इधर उधर कहीं खड़े हो तो बगल से पुकारता है, जैन साहब इधर आओ, वो जैन, वो नाम का जैन है। उनसे हमने पूछा, भैया तुम जैन क्यों हो, बोले यार हमारे पिताजी जैन थे। बोले अच्छा वो क्यों जैन थे, बोले उनके भी पिताजी जैन थे। बोले वो क्यों थे, बोले उनके भी पिताजी जैन थे। तो तुम क्यों हो, बस हम उनके बच्चे, हम उनके बच्चे, उनके बच्चे, तो हम भी जैन है, बस और क्या है। तो कौन सा जैन पहले प्रकार, नाम वाला, नाम का जैन है, खाने पीने का ठिकाना नहीं है, उसमें बैठने का ठिकाना नहीं है, आचरण का ठिकाना नहीं है, नाम का जैन है, क्या कहें उसको। नाम का जैन किस काम का, नाम का जैन तो वैसा है जैसे किसी का नाम भगवान दास हो तो यार थोड़ी नहीं चढ़ाएंगे उसको, नाम भगवान है तो आगे थोड़ी नहीं चढ़ाएंगे नाम। दूसरे जैन वे होते हैं काम के जैन। काम के जैन कौन होते हैं भाई, काम के जैन कौन है, जो काम करते हैं जैनियों जैसे, जैनियों जैसे काम करो तो जैन। मैं सही कहता हूं, यदि हमारे काम जैनियों जैसे नहीं है तो नाम के आगे से जैन लगाना का अधिकार नहीं है हमारे, सरने मटा लेना अपना। काम हमारे जैनियों जैसे होने चाहिए, हमारे आचरण को देख करके, हमारे जीवन को देख करके लोग कहें कि अरे यार ऐसे होते हैं जैन, आपको पता नहीं है। वो सुनना आप वो प्रवचन, सच में वो बहुत अच्छा है वो सरनेश भाई, उसने जैनियों की जो चर्चा की है और जैनियों की जो महिमा गई, वास्तव में जैन कौन होते हैं। एक समय ऐसा था महेंद्र भाई जिस समय में कोर्ट में प्रतिज्ञा नहीं दिलाई जाती थी जैनियों को, क्या जैनियों को प्रतिज्ञा नहीं दिलाई जाती थी, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। अरे आप तो जैन साहब हैं, आपको प्रतिज्ञा की क्या जरूरत है, आप तो बोलो। जैन माने सच बोलने वाले, जैन माने सत्यवादी। राज दरबार में जैनियों को पहले छूट दे दी जाती थी घर जाने की, कि दिन में भोजन करते हैं। जैनियों की बात को प्रामाणिक माना जाता था। जैन कौन होते हैं आपको पता है, आपने कौन से कुल में जन्म लिया है, हम कहां जन्म लिए हमने, काम के जैन तो बनो कम से कम, कोई बात नहीं काम से। हमारा काम ऐसा नहीं हो जिसे देख करके लोग ये कहें अरे जैनी भी पीते हैं। पता है हमारे वहां क्या कहने लगे आजकल मनोज भाई, इंडिया की बात करता हूँ, जयपुर शहर की बात करता हूँ, सिटी उस शहर की बात करता हूँ मुकुंद भाई, जिस शहर में 400 जैन मंदिर है, जैन मंदिर 400 उस शहर की बात करता हूं जहां पर आधा मिलियन लोग जैन है, 500,000 जैन होंगे यहां, उस नगर की बात करता हूं। लोग ऐसा कहने लगे हैं, लोगों से सुनता हूं, मैंने कभी किसी को देखा तो नहीं है, लेकिन कई लोगों से, एक दो बार नहीं, महीनों से, साल दो साल से महेंद्र भाई ऐसी बातें सुन रहा हूं मैं, लोग ये कहने लगे हैं, कई अन्य दूसरे धर्म जाति वाले लोग ये कहने लगे हैं कि मीट के भाव तो जैनियों ने बढ़ाए हैं। क्या ये मांस है ना, इसके दाम क्यों इतने बढ़ रहे हैं, ये जैनियों के दाम है। अब बोलो क्या कहें, तो जैन कहलाने के लायक है, जनवाणी सुनने का पात्र नहीं है, पात्रता नहीं है। काम से जैन बनो, जैसे जैन धर्म बदनाम ना हो, ठीक है ना, दो हो गए। फिर भाव जैन कौन होता है, भाव जैन तो सम्यक दृष्टि जैन है। جس نے اپنے گائے آتما کو پہچانا ہے وہ جین ہے, اور جس نے اسے نہیں پہچانا ہے وہ جین نہیں ہے. یہ تین پرکار کے جین. چلو کوئی بات نہیں, اپن کہاں آ گئے؟ متی گیان, شروت گیان اور من, یہ چرچا چل رہی تھی اپنی. متی گیان, شروت گیان اور من, انتر سمجھ میں آیا کیا؟ اندریاں جہاں کاریہ کرے گی, اندریاں جہاں انوالو ہوگی, اندریوں سے جو ڈائریکٹ گیان ہوگا وہ سب کہلائے گا متی. اندریا سے ہونے کے بعد جو کام ہوا وہ ہو گیا شروت, اور اس کے بعد جو سمجھ نے کام کیا, ریپیٹ نہیں کرنا اس کو, ریپیٹ کرنا کہ نہیں کرنا یہ نرنے, یہ من کا کام ہے. سمجھ میں آ گئی؟ نیر بھائی بولو.
یہ من جس کے آپ بات کر رہے ہو وہ من دربے میں نہیں کی, اور
دربے من کچھ اور من کے نمتے سے کام کرتا ہے بھاؤ من, اس میں کوئی بات نہیں, دونوں ایک ہی ہے. دریہ من پودگلک سنرچنا ہے, بھاؤ من جو ہے وہ گیان کی پریائے ہے, لیکن وہ بھاؤ من دریہ من سے ہی کام کرے گا. جیسے اپنے آنکھ سے بات کہی نا, تو جانتا تو گیان ہی ہے, جاننے والا تو گیان ہی ہے, آنکھ تھوڑی نا دیکھتی ہے, گیان دیکھتا ہے. چلو اب آگے بڑھتے ہیں اپن. اودھی گیان دو پرکار کا ہے, آگے بڑھے. اودھی گیان کتنے پرکار کا؟ دو پرکار کا. اس میں پہلا پرکار بتلاتے ہیں, بھاو پرتیو, بھاؤ پرتیو. اس میں لکھا ہے نارک دیوانام. اس میں اسی کو ہے نا نیچے دو نمبر کے پوائنٹ میں لکھا ہے, بھاؤ پرتیو وزیر دیو نارکانام. دیکھو یہ جو 21 نمبر پر جو سوتر دیا ہے نا, جی ودو ودھی, نیچے دیکھو فٹ نوٹ میں لکھا ہے راش لو ماں سوتر روپے نتھی پستانکما سو را ماچے. کیا 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 کہہ رہے ہیں یہ؟ کیا مطلب یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسپیلنگ مسٹیک نہیں, یہ کہہ رہے سو سا کیا ہے؟ یہ سو سرمار سدھی. را کیا ہے؟ راج وارتک. سلو کیا ہے؟ شلوک وارتک. فرنٹ پیج میں اوپر دیا ہے, میں نے بتا دیا ہے ویسے بھی. سا مانے سرمار سدھی, را مانے راج وارتک, سلو مانے شلوک وارتک. ٹھیک ہے نا؟ ہاں اسے شاید چھوٹ گیا کہ کوئی ڈراپ تو نہیں ہو گیا؟ ہاں ہاں کوئی بات نہیں. دیکھیے کیا کہا ہم نے, بھاو پرتیہ نام کا اودھی گیان, اودھی گیان کا پرکار بتلا رہے ہیں. بھاو پرتیہ نام کا اودھی گیان, یہ بھاو پرتیہ اودھی گیان کیا چیز ہے؟ مکند بھائی فیل ہو گیا آپ کا, پتی گیو بیٹری نہیں, وہ کیا بولتے ہیں میرے خیال سے اسٹوریج فل ہو گیا ہوگا اس کا. کوئی بات نہیں, کب ہو گیا معلوم نہیں. چلو کیا کہہ رہے ہیں یہاں, اودھی گیان دو پرکار کا ہے, ایک کا نام ہوتا ہے بھاو پرتیہ, ایک کا نام ہوتا ہے گن پرتیہ. اودھی گیان کیا ہوتا ہے یہ تو ہم نے آپ کو بتا ہی دیا تھا دو دن پہلے, پرسوں بتایا تھا. وشیش بات جان لے رہے یہاں بیٹھے بیٹھے, وہ اودھی گیان دو پرکار کا ہوتا ہے. نام لکھو دو پرکار کے فٹافٹ, جلدی لکھنے سے کیا ہوگا, ہاتھ چلیں گے آنکھ کھلے گی. ایک کا نام بھاو پرتیہ, بھاو پرتیہ بولو سب, بھاو پرتیہ. دوسرے کا نام گن پرتیہ, گن پرتیہ. پرتیہ مانے ہوتا ہے نمت, تو بھاو پرتیہ مانے بھاو جس میں نمت ہے, بھاو جس میں کارن ہے, ایسا اودھی گیان بھاو پرتیہ اودھی گیان. وہ کس کے ہوتا ہے؟ دیو نارکانام, دیو اور نارکیوں کے, نارک دیوانام, دیو نارکانام, دیووں اور نارکیوں کے ہوتا ہے. ایسا کیسا اودھی گیان ہوتا ہے دیکھو آپ, بڑا گجب ہے بھائی سوروپ. یہ اودھی گیان وہ اودھی گیان ہے جو اودھی گیان भाव में जाने से ही हो जाता है। आपको चाहिए कि नहीं अवधि ज्ञान? परसों जब चर्चा चल रही थी तो बहुत लोगों के मुंह में पानी आ रहा था। परसों चर्चा चल रही थी सच में क्या? अब वो तो यहाँ कैमरे तलाशे जाए कि रिकॉर्डिंग कैमरों की, तो पता लगे कौन कौन व्यक्ति सोच रहा था कि यार काश अवधि ज्ञान अपने को हो जाए, तो पता लग जाए कौन सी चीज के दाम बढ़ने वाले हैं, कौन से शेयर के कहने से पता लग जाएगा तो क्या होगा, तो पीक पर पहुंच करके बेच देंगे अपन। कब घटने वाले हैं पता लग जाए, कब मार्केट टूटने वाला है, कब चढ़ने वाला है। अवधि ज्ञान भव प्रत्यय है, माने भव के निमित्त से होता है। भव के निमित्त से होने वाला ये अवधि ज्ञान कैसा है क्या? ये ऐसा अवधि ज्ञान है, भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान। किसी ने भी यहाँ से मरकर नरक में जन्म लिया, बोले अवधि ज्ञान ऑटोमेटिक हो गया, भव से हो गया। यहाँ से मरकर किसी ने देव गति में जन्म लिया और उसके ऑटोमेटिक अवधि ज्ञान हो गया, ये क्या कहलाएगा? भव प्रत्यय। भव से भवी जिसमें कारण है वो भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान है। हो गया ये सूत्र, भव प्रत्यय अधिर देवनार का नाम, भव प्रत्यय। भव प्रत्यय के निमित्त से नरक और देव, देवों और नारकियों के जो अवधि ज्ञान होता है वो भव प्रत्यय कहलाता है। गुण प्रत्यय क्या कहलाता है? नेक्स्ट आगे वाला सूत्र, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान क्या है? देखो इसके लिए इन्होंने लिखा है क्षयोपशम निमित्त है, यथोक्ति निमित्त है, दो शब्द दिए फुटनोट में अलग दिया, क्षयोपशम निमित्त है या यथोक्त निमित्त है, यथा योग्य निमित्त मिलने पर, क्षयोपशम आदि का निमित्त मिलने पर। षड विकल्प है शेषाणाम, छह भेद वाला होता है गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान, छह भेद वाला होता है, ठीक है। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देवों और नारकियों के होता है, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान छह प्रकार का होता है। छह प्रकार कौन कौन से हैं? वर्धमान, छह प्रकार कौन कौन से हैं? वर्धमान, हीयमान, वर्धमान, हीयमान, अनुगामी, छह प्रकार बतला रहा हूं। एक प्रकार है वर्धमान, बढ़ता हुआ, वर्धमान नाम का अवधि ज्ञान, ऐसा अवधि ज्ञान जो अवधि ज्ञान बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, उत्पन्न होने के बाद में बढ़ता रहेगा, वो वर्धमान है। दूसरे प्रकार का अवधि ज्ञान होता है वो हीयमान, उत्पन्न हुआ था उससे वो अवधि ज्ञान घट रहा है, 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 हीयमान। एक है अनुगामी, थर्ड नंबर क्या बतलाया? अनुगामी। अनुगामी मतलब साथ साथ में चलने वाला, जहां तक जाओगे वहां तक वो साथ में जाता जाएगा। अनुगामी नाम का अवधि ज्ञान नेक्स्ट बर्थ में भी साथ में चला जाता है, यहाँ अवधि ज्ञान और अगले जन्म में भी साथ में चला गया अनुगामी। अनुगामी साथ में नहीं जाने वाला, चार हो गए। एक वर्धमान माने बढ़ने वाला, उत्पन्न होने के बाद में बढ़ता रहे। दूसरा ऐसा अवधि ज्ञान जो उत्पन्न होने के बाद में कम होता रहे, उसका नाम हीयमान। वर्धमान शब्द में बढ़ता है उससे दिख रहा है, हीयमान घटता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्धमान, हीयमान, एक क्या कहा हमने? अनुगामी साथ साथ में जाने वाला, एक अनुगामी साथ में नहीं जाने वाला। एक है अवस्थित, जैसा होगा वैसा ही रहेगा, जैसा था ना वैसा ही रहेगा, न घटेगा न बढ़ेगा, अवस्थित। और अनवस्थित, कभी घटे और कभी बढ़े, पानी की लहरों की तरह ऊपर नीचे होता रहे, ये अनवस्थित। छह प्रकार का इन्होंने कहा षड विकल्प है। षड विकल्प का भेद अर्थ किया है मैंने, ये षड विकल्प जो शब्द दिया है, इस षड विकल्प का मतलब है छह भेद वाला, शेषाणाम माने दूसरा वाला। भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान देवों और नारकियों के होता है, और गुण प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान मनुष्य त्रियंचों के होता है, जिसमें क्षयोपशम निमित्त बनता है उसके छह भेद होते हैं, किसी के बढ़ता रहता है, किसी के घटता रहता है, कोई अवस्थित रहता है, कोई अनवस्थित रहता है, किसी किसी के साथ साथ में भी चला जाता है, किसी के साथ में नहीं भी जाता है। चलो यहाँ तक हो गया काम, आगे बढ़ो। आगे वाला सूत्र, ऋजु विपुल मति मनः पर्याय है। ऋजु विपुल मति सब गए आप लोग सब, ऋजु विपुल मति आवाज आई नहीं रही, 10% लोग भी नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है इतने में। ऋजु विपुल मति मनः पर्याय है, मनः पर्याय है, ऋजु विपुल मति मनः पर्याय है। मनः पर्याय ज्ञान दो प्रकार का, मनः पर्याय ज्ञान दो प्रकार का, एक का नाम ऋजु मति, दूसरे का नाम विपुल मति। मनः पर्याय ज्ञान दो प्रकार का है, एक का नाम ऋजु मति, दूसरे का नाम विपुल मति। ऋजु और विपुल मति ये दो प्रकार का मनः पर्याय ज्ञान। मति ये है, ऋजु मति बुद्धि है इस तरह की, जिनकी बुद्धि है, जिनका क्षयोक्षम इस प्रकार का है, विपुल मति और ऋजु मति। मनः पर्याय ज्ञान, मनः पर्याय कौन सा था ज्ञान, भूल गए आप लोग, याद है चौथा था, और क्या काम था इसका, मन की बात जान लेना, मन की बात जान लेना मनः पर्याय ज्ञान का काम था। ऋजु और विपुल मति बोले यार ये समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसको समझाओ तो सही आप, तो आगे एक सूत्र लिख दिया समझाने के लिए, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम ऐसा बोलो, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है। क्या कह रहे हैं ये, ऋजु मति और विपुल मति जो दो कहे थे ना मनः पर्याय ज्ञान, ऋजु मति मनः पर्याय ज्ञान ये सरल है, सरल बातों को जानता है, किसी सामने वाले व्यक्ति के मन में सीधी सीधी कोई बातें चल रही हो उसको जान लेगा ऋजु मति मनः पर्याय ज्ञान वाला। लेकिन जो विपुल मति मनः पर्याय ज्ञान वाला है क्या, वो गूढ़ बातों को भी जान लेगा। क्या कहा, देखो हमने कहा एक व्यक्ति के मन में कुछ चल रही थी उथल पुथल, सीधी सीधी सी बातें चल रही थी, तो ऋजु मति मनः पर्याय ज्ञानी ने जान ली। लेकिन वो मन की उथल पुथल इतनी ज्यादा थी कि कभी क्या सोचता है, कभी क्या सोचता है, जाने क्या करेगा, बहुत उलझन उठपटांग चल रहा है, तो इसको ऋजु मति वाला नहीं पकड़ पाएगा, इसको विपुल मति मनः पर्याय ज्ञान वाला पकड़ पाएगा। मतलब मनः पर्याय ज्ञान वाले दो प्रकार के व्यक्ति समझना, एक ऋजु मति मनः पर्याय ज्ञान वाले, एक विपुल मति मनः पर्याय ज्ञान वाले, ठीक है। तो ऋजु मति मनः पर्याय ज्ञान वाले कैसे हैं और विपुल मति वाले कैसे हैं, तो इनमें अंतर बतलाया, सद विशेष है इनमें, इन अपेक्षाओं से अंतर है, दो बातों से अंतर है, एक विशुद्धि से और एक अप्रतिपात से। अप्रतिपात माने नहीं गिरना, और विशुद्धि, ऋजु मति वाले की विशुद्धि कम है और विपुल मति वाले की विशुद्धि ज्यादा है। विशुद्धि माने पवित्रता, प्योरिटी, क्लियरिटी, निर्मलता है, विशुद्धि पवित्रता। तो विशुद्धि की अपेक्षा से दोनों में अंतर है, एक की विशुद्धि कम है और दूसरे की विशुद्धि ज्यादा है, विशुद्धि की अपेक्षा से भेद हो गया दोनों में। अभी कह रहे हैं अप्रतिपात, गिरने की अपेक्षा से भी फर्क है, ऋजु मति मनः पर्याय ज्ञान होकर के छूट सकता है, किसी के ऋजु मति मनः पर्याय ज्ञान हुआ और छूट गया, संसार में अभी समय है अभी घूमने का। एक दूसरे प्रकार का जो मनः पर्याय ज्ञान का है विपुल मति, बोले वो छूटता नहीं है कभी, क्या बात कर रहे हो, विपुलमति मने पर यह ज्ञान किसी के हो गया तो छूटेगा नहीं, तो क्या करेगा कि वो आगे बढ़ता बढ़ता केवल ज्ञान में बदल जाएगा। तो विपुलमति मने पर यह ज्ञान कभी भी छूटता नहीं है, ये बात कही विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है। समझ में आ गया? शिष्य ने पता है क्या प्रश्न किया? शिष्य ने कहा महाराज आप ऋजुमति और विपुलमति का अंतर तो बतला रहे हो, पहले अवधि और मने पर्यय में तो अंतर बता दो। अवधि और मने पर्यय में क्या अंतर है? तो आगे वाले सूत्र में कहा विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मने पर्ययो हो। क्या कहा? विशुद्धि क्षेत्र स्वामी, बोलो विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि विषयेभ्यो अवधि मने पर्ययो हो। ये अवधि और मने पर्यय का अंतर बतला रहे हैं। विशुद्धि से अंतर है अवधि ज्ञान में और मने पर्यय ज्ञान में। किसकी विशुद्धि ज्यादा होगी? अवधि और मने पर्यय में विशुद्धि की अपेक्षा अंतर है, अवधि की कम है उसकी ज्यादा है। क्षेत्र की अपेक्षा से किसका ज्यादा होगा, अवधि का या मने पर्यय का? अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा है और मने पर्यय ज्ञान का क्षेत्र कम है, ये अंतर है। मने पर्यय ज्ञान का क्षेत्र मनुष्य लोक है, सिर्फ मनुष्य लोक, और अवधि ज्ञान का क्षेत्र तीन लोक भी हो सकता है। स्वामी, स्वामी की अपेक्षा से भी फर्क है। पूछ रहे हैं कुछ? हाँ हो सकता है, हो सकता है किसी व्यक्ति को अवधि ज्ञान नहीं हुआ, सिर्फ मति श्रुत ज्ञान है, तो मने पर यह भी हो सकता है साथ में। मुनि को ही होता है, लेकिन अवधि हो उन मुनिराज को ये जरूरी नहीं है। हाँ तो भी अवधि नहीं, रिद्धि है, रिद्धि है। किसी को अवधि ज्ञान रिद्धि है, किसी को मने पर यह ज्ञान रिद्धि है, कैसा है? अभी आएगी, कल खत्म करेंगे अपन ये चर्चा। कल तो बहुत मार्मिक बातें भी आने वाली है, बहुत चर्चा सुंदर करने वाले हैं कल हम। कल अंतिम दिवस है ना, कल चर्चा अच्छी नहीं करेंगे तो कैसे बुलाऊंगे फिर बाद में? हाँ मैं तो आ ही रहा हूँ, और मुझे मालूम है मुझे तो आना ही है। मतीश्वर की बात है भाई, और तो कुछ है नहीं हमारे पास में। अभी हम आपको अवधि भी कह सकते हैं, आपको चमत्कार दिखेगा, कुछ लोगों को फोन कर दोगे, ईमेल कर दोगे, कल मंदिर में बैठने की जगह नहीं होगी, व्यवस्था बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन मैं नहीं चाहता, इसलिए सच्ची बात बता रहा हूँ। मति और शुद्ध दो ही है, अवधि नहीं है मेरे पास में, ठीक है ना? देखो देव और नारकियों के तो भाव प्रत्यय दो प्रकार के कहे थे ना, भाव प्रत्यय वाला है। देखो फास्ट एक मिनट लूंगा बस, अभी एक से डेढ़ मिनट और है अपने पास में। विशुद्धि से अंतर हो गया, समझ में आ गया? क्षेत्र से अंतर समझ में आ गया, स्वामी में अंतर है। अवधि ज्ञान के स्वामी गृहस्थ भी हो सकते हैं, अवधि ज्ञान के स्वामी देवनारकी भी हो सकते हैं, मनुष्य तिर्यंच भी हो सकते, ठीक है ना? लेकिन मने पर्यय ज्ञान के स्वामी सिर्फ मनुष्य गति वाले ही होंगे, सिर्फ मुनि ही होंगे, रिद्धिधारी मुनि ही होंगे। स्वामी में फर्क है बहुत। फिर विषय, विषय में भी बहुत फर्क है। अवधि ज्ञान का विषय और मने पर्यय ज्ञान का विषय, दोनों के विषय में अंतर है। ये अवधि मने पर्यय हो, अवधि और मने पर्यय ज्ञान के इस तरह के अंतर की बात यहाँ तक अपनी हुई है। 26 सूत्रों तक की अपन ने चर्चा की है। अब तो पहुंच गए मनोज भाई, क्या लगता है खत्म होगा कि नहीं? कल होगा ना? कल पूरा, चलो कल अपन पूरा करेंगे। पांचों प्रकार के ज्ञानों के विषय क्या है, किसके कितने ज्ञान हो सकते हैं, कम से कम कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, मिथ्या हो सकते हैं क्या, ये भी चर्चा होगी। और इसके अलावा एक अंतिम सूत्र बहुत मार्मिक है, नयगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र, ये 7 प्रकार के जो नये हैं, उन नयों के प्रयोग, माने मैं एक सिंगल प्रवचन करता हूँ उसके ऊपर, यूट्यूब पर तलाशेंगे तो वो सिंगल प्रवचन भी मिल जाएगा इस लास्ट वाले सूत्र के ऊपर, जो लास्ट सूत्र है, सेकंड लास्ट है आपकी पुस्तक में, नेगम संग्रह वाला। कल करेंगे बहुत मार्मिक चर्चा, अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं।
चरण मां वंदन अगणी